तारीख 4 अप्रैल 2016। आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, कुमार जीवन। अव्यक्त बापदादा की शुभ आशा है तपस्वी कुमारों के प्रति। ये मुरलियों का संकलन स्पार्क की ओर से है, जो कि 69 से लेकर तो 69 से 2005 तक की मुरलियों से लिया गया है। सबसे पहली जो मुरली यहाँ पर है, वास्तव में हमने कवर कर चुकी है, 16 अक्टूबर 1969 की, 69 की जो मुरली है, तो ये तो हमारी पड़ी हुई है और यहाँ पर रिवाइज भी हो चुकी है। फिर भी हम इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो ये मुरली है सबसे पहली 16 अक्टूबर 1969, 16 अक्टूबर 1969। मुरली का हेडिंग है परखने की शक्ति को तीव्र करो। बीच से हम आज चालू कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि ये मुरली हम रिवाइज कर चुके हैं। तो बाबा कहते हैं, यह बगीचा है। बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हरेक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही अगर आप मस्तक के मणि को देख ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर क्या हो जाएगा? दृष्टि और वृत्ति क्या बन जाएगी? शुद्ध और सतो प्रधान। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है। मस्तक के मणि को ना देख, क्या देखते हैं? शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को ना देखो, किसको देखो? मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो क्या? जब रूप को देखते हो तो क्या समझो? ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक में मणि होता है ना, तो मणि को देखते हैं, देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। तो देह क्या है? ये कैसा सांप? कितना जहरीला? बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीला। सांप को देखा तो क्या हो गया? और सांप ने, अशोक भाई, सांप को देखा और सांप ने क्या कर दिया? डंग मार दिया। अच्छा, सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा, सांप में विष होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होता है। आप गोपों को, सांप को कैसे माना है, क्या करेंगे? माना है, आप गोपों को, सांप को कैसे माना है, क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का तो विष होता है, वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उतर जाएगा, और क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा पूरा, बेअसर हो जाएगा। मणि को देखने से सांप का तो विष होता है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो, निखिलेश भाई, शरीर को अगर देखा, केवल देखने की बात, हाथ तो लगाया नहीं अभी, केवल देखा, वो सांप को देखने से कुछ होता है? डर वो सांप को देखने से डर होता है, और ये सांप को देखा तो उसके बन जाएंगे, उस समान बन जाएंगे। इतना जहरीला है कि तुरंत सारा शरीर विषाक्त हो जाता है। लेकिन मणि को देखेंगे तो, सांप को देखा तो सांप जैसा बन जाएंगे, और मणि को देखा तो मणि जैसे बन जाएंगे, महान बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान, या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को। मणि भाई, किसको देखेंगे आज से? केवल मणि को देखना, समझना मैं भी मणि और बाकी सारे जो है वो सभी मणि है, ठीक है। फिर जो यह कंप्लेन है, कौन सी कंप्लेन? वृत्ति दृष्टि चंचल होती है, ये कंप्लेन है। कंप्लीट, वह कंप्लेन है वह बदलकर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बुद्धि की फर्क से, कहां कंप्लेन कहां कंप्लीट, दिन रात का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फर्क है, कंप्लेन ये ले और ये ली, कंप्लीट ये कंप्ले। यहां भी ऐसे है, दो बिंदी, एक स्वयं की एक बाप दादा की, यह दो बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेन की बजाय कंप्लीट हो जाए। इसलिए आज से यह प्रतिज्ञा, आज से यह प्रतिज्ञा किससे करो? अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञा की है, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि क्या प्रतिज्ञा करेंगे? आज अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? आज से लेकर, अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि को चमकाएंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जग प्रतिज्ञा करेंगे, जब होगा, जब प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी, परिपक्वता भी आएगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो, लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा, और शक्ति सेना है, अंजलि बहन, शक्ति सेना क्या है? पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा, और शक्ति सेना, शक्ति तू आत्मा क्या है? योगी तू आत्मा, सेवाधारी तू आत्मा, बाबा कह रहे हैं स्नेही तू आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है, यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है, अगर मेहनत ली हुई है यहाँ चुप्पू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा, इसलिए जो मेहनत ली उसे भर कर देना। तो क्या सुना? बाबा कह रहे हैं यह बगीचा है, बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हरेक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक की मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध और सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है, मस्तक के मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को न देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो, परंतु मस्तक का ये मणि तो अदृश्य है, जो अदृश्य है उसे देखना है और जो दृश्यमान है उसे नहीं देखना है। ये आसान काम है या कठिन?
मुश्किल आसान।
जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि किसको देख रहे हैं, सांप को देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? यह देह क्या है? मिट्टी को देख रहे हैं। यह देह क्या है? भूत। भूत को देख रहे हैं तो भागेंगे फिर। पंच महाभूतों का बना हुआ ये पुतला है। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भाति भूतसंगम। उपनिषदों में लिखा है कि मैं वह हूं। तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भाति भूतसंगम। ये जो शरीर है भूतों का जैसे संगठित किया हुआ एक संघ है, पंच महाभूतों का। न च भाति भूतसंगम, ये भूतसंग मैं नहीं हूं। मैं प्रातस्मरामि, अमृत वेले उस तत्व का चिंतन करो जो तुरिया अवस्था में प्राप्त होता है, आत्मा की जो स्टेजेस उसमें बताई है। तो यह देह जो है वो सांप कह रहे हैं बाबा, यह देह जो है मिट्टी है, यह देह जो है भूत के समान है, यह देह जो है ये पंच महाभूतों का केवल एक संगठन मात्र है। ये देह और क्या है? नाशवान है, नश्वर है। ये देह आज जो है वो कल नहीं रहेगा। अपने ही बचपन से अब तक के फोटो देखो, अपने ही बचपन से अब तक के फोटो एल्बम में, तो पता चलेगा जो मैं वो था वो आज नहीं हूं। सब बदल रहा है, देह कितना बदल रहा है। जो बचपन का फोटो, फिर एक साल के बाद, फिर दस पांच साल के बाद, सारे फोटो हम देखे तो हर फोटो अलग अलग है। ये तो केवल मुझे पता है कि ये मैं हूं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताया जाए तो शायद वो पहचाने भी नहीं कि ये तुम ही हो बचपन के। इतना व्यक्ति बदल रहा है, ये देह बदल रहा है। एक तो नाशवान है, ये नश्वर है सब कुछ। और ये देह क्या है? कैसे इस देह से वैराग उत्पन्न हो जाए? मांस का पिंड और शव है, और शमशान घाट में देह को जलते हुए देखा है ना, कहाँ है? सब कुछ जल रहा है, लपटे ही लपटे, आग ही आग है। बस पंच तत्व से आया है और पंच तत्व में ही उसे विलीन हो जाना है। कहाँ है वो सौंदर्य? कहाँ है वो सौंदर्य? कहाँ है वो प्रतिष्ठा? कहाँ है वो अकड़? सब कुछ नष्ट, सब कुछ समाप्त। बुद्ध के लिए कहा हुआ है जब वो निकलता है अपने घर से सब कुछ छोड़कर, और उसका जो सारथी होता है वो जब उतरता है और सारथी को कहता है कि अब तुम जाओ, वो कहता है अब मैं यहां से मेरी यात्रा अकेले की है। वो चन्ना जिसका नाम रहता है वो कहता है अरे एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, देखो वो तुम्हारा राजभवन, वो राजप्रासाद, वो तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हारा बच्चा, वो ऐशो आराम, क्या कुछ नहीं है, पीछे एक बार मुड़ के तो देखो। वो मुड़कर देखता है और कहता है मुझे केवल एक ही चीज नजर आ रही है, आग की लपटें, केवल आग और कुछ नहीं। जो कुछ दिख रहा है सब कुछ जल रहा है, सब कुछ भस्म हो रहा है। यह देह नाशवान है, यह देह समाप्त हो जानी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता में लिखा हुआ है जन्म का चिंतन करो, मृत्यु का चिंतन करो, व्याधि का चिंतन करो और बुढ़ापे का चिंतन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, साक्षी होकर इनसे जो दुख उत्पन्न होता है जन्म से उसका चिंतन करो। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है वो जगह इतनी छोटी है, बाबा जिसको क्या कहते हैं, गर्भ झेल, शास्त्रों में दिखाया हुआ है, उस गर्भ जेल में जैसे उसका दम घुटता है, वो प्रार्थना करता है कि मुझे यहां से निकालो, हिल भी नहीं सकता है, चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड जिसको कहते हैं लिक्विड, उसको हिंदी में क्या कहते पता नहीं मुझे, जो लिक्विड होता है पूरा गर्भ में, उसके अंदर हाथ ऐसे करके माफी मांग रहा होता है कि मुझे निकालो, अगर मुझे निकालोगे तो मैं आपको याद करूंगा, भगवान से प्रार्थना करता है। उसको सारे अपने पाप दिखाई देते हैं पूर्व जन्म के, आत्मा देह में आ चुकी है, उस आत्मा अब पश्चाताप कर रही है कि मुझे निकल जाने दो बस एक बार, नहीं माँ का पाप क्यों, वो तो उस आत्मा ने उस गर्भ को चुना ना, उसके जैसे कर्म है उस अनुसार ही उस गर्भ को चुना है, आत्मा गर्भ को का चुनाव करती है, या उसे वहीं जाना पड़ता है जैसे उसके कर्म है, उसी माँ बाप के पास जाएगी वो। जो महान आत्मा है वो कहते हैं अब तक भी गर्भ ढूंढती है कि कैसे कोई महान श्रेष्ठाचारी माँ बाप मिल जाए उसे, उसी गर्भ में हो जाती है और वहीं से साधना फिर से आरंभ करती है। इसके लिए बचपन से ही जागृत अवस्था रहती है, सोई हुई नहीं रहती है, जैसे वो हरबीन देखा ना, बचपन से ही अवेकन स्टेज है। ये 10 साल की उम्र में कोई व्यर्थ संकल्पों की बात करे, पता था आपको व्यर्थ संकल्प क्या है जब 10 साल के थे? संकल्प क्या है वो ही पता नहीं था। अवेकंड स्टेज में आत्माएं आती है, अवेकंड मतलब उनको वो संसार में जाके गलतियां कर वापस इधर आने की जरूरत नहीं है, भोग कर फिर पश्चाताप करके वो सब करने की जरूरत नहीं, जन्म ही ऐसे माँ बाप के पास होता है जो पहले से ही जागृत अवस्था में है। आत्मा सोती नहीं है, बस अवेकंड स्टेज है, एक एनलाइटेंड स्टेज है, जिसे तुरंत पता चल गया कि मेरी साधना छूट गई थी, अभी फिर से साधना आरंभ कर ली वहीं से उसी अवस्था से। तो जन्म, फिर है मृत्यु, जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ समाप्त होने वाला है। बाबा ने कहा है इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब कुछ खत्म होने वाला है, आंखों सहित, आंखें भी नहीं बचेगी जिन आंखों से देख रहे हो। तो मृत्यु का निरंतर चिंतन, ये देह जो आज इतना सुंदर दिख रहा है एक दिन इसे समाप्त हो जाना है, ये भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद है जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा, बुढ़ापे बूढ़े व्यक्ति को देखा है ना कैसा होता है, आंखों से दिखता नहीं, दांत सारे गिर जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसमें अगर बीमारी आ गई तो और ही दुख, खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसी निरीह निर्बल अवस्था हो जाती है आत्मा की, अवलंबित है दूसरों पर, दूसरे अगर मदद ना करे तो गया। एक ऐसा ही बूढ़ा व्यक्ति रास्ते की सड़क पर बैठा रहता, इतनी जर्जर अवस्था हुई है उसकी। एक युवक वहां से रोज गुजरता है और हमेशा उस बूढ़े भिखारी को देखता है और कहता है कि कितनी आसक्ति है इसको देह की, इससे तो इससे मर जाना चाहिए, पर ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसा है कि रोज आकर बैठता है और सारे दिन भर भीख मांगते रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध आती है, दिखाई नहीं देता है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, फिर भी पहुंच जाता है रोज भीख मांगने के लिए, यह भी कोई जीवन है, इतनी आसक्ति जीवन से, ऐसी जीवेशना, इसे तो समाप्त हो जाना चाहिए। एक दिन पूछ ही लेता है उससे, इतना जीवन के प्रति मोह क्यों तुम्हें? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे जीवन के प्रति मोह नहीं है, ये तो मैं इस तन में अब तक इसलिए बैठा हूं कि जो गुजर रहे हैं उनको दिखाने के लिए कि तुम्हारी भी एक दिन यही अवस्था होने वाली है जो आज मेरी है, ये अटल सत्य है, कोई भी इससे छूट नहीं सकता। कौन चाहता है कि हम 30 उम्र पास करें, हमेशा चाहते हैं कि 20 में ही रहे, जब 30 में पहुंचते हैं तो हमेशा समझते हैं 40 कभी ना आए, वो 40 का स्टैंप नहीं लगना चाहिए, वो 30 में ही रहे हमेशा, 40 आती है तो समझते हैं 50 तो बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहिए, 40 में रहे तो कैसे हम नए युद्ध इधर आए थे ना, 40-50 के बाद तो थोड़ा बूढ़े जैसा मालूम पड़ता है।
40 भले आए लेकिन लगे भी थे।
नहीं वो स्टैम्प भी ना लगे, ऐसी आसक्ति होती है व्यक्ति की उम्र के लिए भी। 50 हो गया तो उसके बाद में लगता है कि बताने के लिए भी थोड़ा ये लगता है, शर्म आती है। 2-3 साल कोई कोई ज्यादा ही करते हैं, थोड़े बताते नहीं है। वो उसके लिए आसक्ति होती है एक, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एक दुख अंदर एक दुख आता है कि उम्र बढ़ रही है क्या करे। हाँ हमारे पास जो हॉस्पिटल में जब भी हमारी बहनें एडमिट होती है जो दूसरे डॉक्टर है जो ज्ञान में नहीं है, अभी उन्हीं को क्या पता, वो हमेशा कहते माता जी इधर करो, उनको बाद में बता रहे इनको माता जी मत कहो, ये तो 40 साल से समर्पित ब्रह्मा कुमारी है। उनको क्या पता, वो तो हम माता जी कहते तो वो भी सबको माता जी कहना चालू करते। माता जी कहेंगे, कभी कभी दादी भी कह देते किसको, वो तो बहुत ही लाल पीले हो जाते फिर ब्रह्मा कुमारी। अगर दादी कह दिया तो बुढ़ापा कोई नहीं छूट सकता इससे, वो सब होगा, ये सौंदर्य जो है वो नष्ट हो जाएगा, जितनी आज अकड़ है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। रूप ब्यूटी इज बट स्किन डिप कहा जाता है, सौंदर्य जो है बस ये चमड़ी तक है, चमड़ी को हटाओ देखो क्या सौंदर्य, सारी चमड़ी को एक तरफ कर दो और फिर जो देखो जो दिख रहा है क्या है। तो बुढ़ापा और अंतिम है व्याधि, व्याधि अर्थात बीमारी। बीमारी आने के बाद में कहां है वो सौंदर्य, कैसे हो जाता है शरीर बीमारी में, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, आंखें अंदर चली जाती है, गाल अंदर चले जाते हैं, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, और ही कमजोरी, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, ये दृश्य भी बार बार देखते रहना, इसके लिए अस्पताल में थोड़ा चक्कर लगाते रहना बीच बीच में, क्या देखने के लिए, ये दृश्य देखने के लिए, साक्षी होकर देखने के लिए, हो सकता है वहां जो लोग है वो भी नहीं देखते, उनको अपने काम में रहते हैं, इसके लिए साक्षी अवस्था से ही इसे देखा जा सकता है। देखना बस ये है जीवन की परिणति, ये है जितना जीवन भर आपाधापी की, ये है अंतिम निष्पत्ति, दिस इज द रिजल्ट, ये प्राप्त हुआ है। इसके लिए कहते हैं वो जो मरघट है शमशान वो कहां होना चाहिए, शहर के बीचों बीच, उधर नहीं बाहर, ताकि याद दिलाए हर एक को कि यही सबको आना है। मार्केट के पास याद दिलाए कि यही है अंतिम सत्य जीवन का, तो इस देह से वैराग आएगा। ये जो देह है ये देह से सुख नहीं मिलता है, पुरुष को लगता है कि स्त्री की देह से सुख मिल रहा है, स्त्री को लगता है पुरुष की देह से सुख मिल रहा है, ना तो इधर से सुख आ रहा है ना तो उधर से सुख आ रहा है, क्षणिक सुख जो आ रहा है वो स्वयं स्वयं से ही आ रहा है, जैसा कुत्ता जो होता है वो सूखी हड्डी को पकड़ता है, झपटता है, लड़ता है बाकी कुत्तों से और चबाता है जोर जोर से, उसको लगता है उसी का खून निकलता है और अपना ही खून वो पीता है, उसको लगता है वो उस हड्डी से आ रहा है, कितनी भ्रांति है उसकी, पुरुष को लग रहा है उससे आ रहा है, स्त्री को लग रहा है उससे आ रहा है, वो उससे नहीं आ रहा है, वो भ्रांति है, भ्रम है। देह का जो सौंदर्य का प्रदर्शन किया हुआ है उपन्यासों में फिल्मों में, उसने और ही भ्रमित कर रखा है युवकों को, उनको क्या लग रहा है कि इसमें बहुत सुख है, स्पर्श में बहुत सुख है, काहे का सुख, पत्थर मिट्टी और देह सब समान ही है, उसमें कोई सुख नहीं है, इसको स्पर्श करने में कौन सा सुख है, वैसा ही वो भी है, परंतु भ्रमित है, भ्रामक चित्र बनाए रखा है, एक ऐसी ऐसी कविता है और ऐसे ऐसे गीत लिखे गए हैं कि जो युवक और ही भ्रांत हो गया है, दिग्भ्रमित जिसको कहते हैं, दिशाहीन हो गया है, भटक रहा है, सारे संसार में एक नजर दौड़ाओ तो देखो क्या हो रहा है, सारे युवक, स्त्री और पुरुष, सारे कॉलेजों में जाओ और देखो स्त्री और पुरुष क्या कर रहे हैं। एक ही वासना ने घेर रखा है, काम और काम बस। इस देह के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करो। जब तक ये देह का वास्तविक स्वरूप का चिंतन, और बाबा जो विधि बता रहे हैं वो तो इससे ऊंची है। बाबा कह रहे हैं इस देह को देखो ही नहीं, केवल मस्तक के मणि को देखो बस। ये उससे भी ऊंची अवस्था है, केवल मणि को देखना। देह दिख भी जाए, कहते हैं ना संन्यास में, किसी संन्यासी ने स्त्री को एक बार देख लिया वो तो ठीक है, वो नेचुरल, एक बार देखना। उसी को दोबारा देखने की देखना यह इच्छा है, उसी को तीसरी बार देखना यह वासना है। इसके लिए देह को देखते हुए न देखना, देह को देखते हुए मस्तक की मणि को देखना, देह को देखते हुए भी देह के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना। ये देह है, एक दिन इसे बूढ़ा होना है। ये देह है, एक दिन इसे मृत्यु शैया पर लेटना है। इसके लिए बार बार उधर जाना भी आवश्यक है, थोड़ा शमशान में देखने के लिए। क्या देखने के लिए? आग कैसी, वो लपटे जो आग की उठती है, साक्षी होकर देखो उसको, तो वैराग और प्रबल होगा। हाँ, जाना तो पड़ता है, नहीं अनरिलेटेड जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं तो भी वहां जाए, बीच बीच में महीने में एक दो बार तो चक्कर लगना चाहिए, चाहे यहां से कोई जाए या ना जाए, जाए इन द सेंस शरीर छोड़े या ना छोड़े बीच बीच में देखना चाहिए वहां जाकर। पर कोई कोई वहां जाकर भी वो नहीं देखते जो देखना चाहिए, वो रूटीन जैसे कारोबार होता है वो करके आना, वो उससे वैराग नहीं आएगा भागा, वो कारोबार समझकर नहीं, केवल साक्षी होकर देखने के लिए। कुछ नहीं करना, दूर खड़े रहकर केवल देखना। क्या देखना? आग को, आग की उन लपटों को, यही है सत्य, यही है सत्य। शमशानी वैराग अपने अंदर लाना, वो भी जरूरी है बीच बीच में, जो है अल्पकाल का परंतु आवश्यक है, क्योंकि हमारे ज्ञान से मिलता है वो कि ये जीवन की वास्तविकता है। तो इसमें कल की मुरली में वरदान में तीन शब्द थे, जल्दी से घबराना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं। आंधी तूफान सब आएगा, ये मार्ग भी पवित्रता का ऐसा है, पवित्रता की नाव में बैठे अथक बनना है। तो आज से हम ला कर रहेंगे, ये प्रतिज्ञा अपने आप से करो। क्या कहा इस मुरली में? ये प्रतिज्ञा अपने आप से करो, आज से मस्तक के केवल मणि को ही देखेंगे। कल की मुरली में सार था ज्ञान का, स्वयं को ज्योतिबिंदु आत्मा समझना। उसके आगे है स्वयं को तो समझना ही है, पर दूसरों को भी समझना है, और कितनी बार भी अगर गिर गए फिर उठना है और फिर से जर्नी आरंभ करनी है, क्योंकि साथी स्वयं भगवान है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, अथक बनना है। तो आज हम गुणों की माला, दिव्य गुण धारण करने में क्या समस्या आती है, सबसे पहला आज का जो दिव्य गुण है वो है अथकपन। इस अथकपन पर आज से कमेंट्री हम चालू कर रहे हैं। पहला दिव्य गुण है, 36 दिनों की ये कमेंट्री है।